ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॐ ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः तदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम् हे कृष्णा करुणा सिन्धो दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिका कान्त राधाकान्त नमस्ते तप्त काञ्चना गौराङ्गी राधे वृन्दावनेश्वरे वृषभानुसुते देवि प्रणमामि हरिप्रिये वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभुनित्यानन्द श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासवि गौरभक्तवृन्द हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा। तो आप सबका स्वागत है इस विशेष उत्सव में। तो इस उत्सव का नाम है आनंद उत्सव। क्या है? आनंद उत्सव। तो ये जो शब्द है आनंद, ये हम सबको परिचित है। तो कृष्ण भगवान का जो दिव्य देह है, शास्त्र कहते हैं ईश्वर परम कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह अनादि राधिर गोविंद सर्व कारण कारण। तो कृष्ण सारे कारणों के कारण है और उनका जो स्वरूप है, उनका जो देह है, वो तीन चीजों से बना हुआ है। अभी हम अपने भौतिक बुद्धि के द्वारा सोचते हैं कि कृष्ण का जो शरीर है वो हमारी तरह है, और हमारा शरीर कैसे है? मल मूत्र गंदगी हाड़ हड्डियां मांस हैं, मज्जा हैं, कई प्रकार की चीजें हैं। आप सुबह उठते हो तो देखते हो तो ये शरीर बाहरी रूप से बहुत सुंदर लगता है, लेकिन जैसे ही कवरिंग को हटाया जाए तो उसकी जो रियलिटी है, वास्तविकता है, वो पता चलती है। जब हम सुबह उठते हैं तो भगवान गीता में कहते हैं नव द्वारे पूरे देही, इस शरीर में 9 गेट्स है, 9 होल्स है, और ये सारे जो 9 गेट्स है, इस बॉडी से कोई सुगंधित पदार्थ बाहर नहीं भेजते। अल्टीमेटली क्या भेजते हैं? गंदगी भेजते हैं। फिर भी ये जो जीव जो इस शरीर में है वो हमेशा यही सोचता है कि किस प्रकार से मैं इस बॉक्स को थोड़ा सा आगे करेंगे क्या, शायद वो आवाज नहीं कर रहा। हरे कृष्णा। तो वैसे देखा जाए जो बुद्धिमान व्यक्ति है वह एक क्षण के लिए यदि सोचे इस शरीर के बारे में तो वह समझ सकता है कि जो शरीर जो मैंने धारण किया हुआ है ये वास्तव में मुझे किसी भी प्रकार का सुख या आनंद प्रदान नहीं कर रहा है, बल्कि मैं अपना जीवन इस भ्रम में जी रहा हूं कि मेरे सुख का आनंद का एंजॉयमेंट का जो साधन है वो ये बॉडी है। और वास्तव में जो जीव ये जगत में आनंद या सुख उपभोग करता है वो केवल शरीर के माध्यम से और शरीर के साथ उसकी इंद्रियां हैं, पांच ज्ञान इंद्रियां हैं और पांच कर्म इंद्रियां हैं। ये इंद्रियां हमारे सुख उपभोग के माध्यम है। हम जिह्वा के द्वारा टेस्टी फूड खाना चाहते हैं, आंखों के द्वारा ब्यूटी को देखना चाहते हैं, ईयर्स कानों के द्वारा स्वीट सॉन्ग्स स्वीट वॉइस सुनना चाहते हैं, त्वचा के द्वारा मृदु त्वचा का स्पर्श करना चाहते हैं। तो इस प्रकार से देखा जाए ये जो शरीर जिसको हमने धारण किया है, बाहर रूप से लगता है कि बहुत आनंद देने वाला है, लेकिन नहीं। बुद्धिमान व्यक्ति कुछ क्षण के लिए भी सोचे कि यह आनंद का व्हीकल नहीं है, आनंद देने वाली वस्तु नहीं है, बल्कि शरीर से हमें क्या वैराग्य आना चाहिए, क्या आना चाहिए, इसे तो सिखाता है ये शरीर। कितने प्रकार के कष्ट हैं, चाणक्य कहता है कष्ट दोषे कुले नास्ति व्याधिना कौन पीड़िता। कौन सा ऐसा फैमिली है जिनमें कुछ दोष नहीं है, कुछ ना कुछ समस्या नहीं है, ऐसा कोई परिवार है नहीं है, कुछ ना कुछ लगा हुआ है। सेकंड वो कहते हैं व्याधिना कौन पीड़िता, कौन ऐसा व्यक्ति है जिसके शरीर में कुछ व्याधि नहीं है, डिजीज नहीं है, ट्रबल नहीं है, कुछ ना कुछ लगा हुआ है शरीर के साथ। कभी बहुत थकान है तो गर्मी सहन नहीं हो रही है, ठंड सहन नहीं हो रही है, हड्डियां दर्द हो रही है, घुटने दर्द हो रहे हैं, बैक पेन का प्रॉब्लम है, आंखों में चश्मा लगा हुआ है, कान की प्रॉब्लम है, दांत की समस्या है, कोलेस्ट्रॉल बढ़ रहा है, हार्ट अटैक है, ब्लड प्रेशर हाई है, डायबिटीज है, ये तो कितना लंबा लिस्ट है। मतलब इतना सब होने के बावजूद भी हम वास्तव में अज्ञानता में जी रहे हैं। इसलिए श्रीमद् भागवत में शुक्रदेव गोस्वामी कहते हैं ये जो व्यक्ति पश्यन्नपि न पश्यति, व्यक्ति सोच रहा होगा कि मैं देख रहा हूं, वास्तव में हम देख रहे हैं अपनी दोनों आंखों से, फिर भी हमें दिखाई नहीं दे रहा है। हम इतने भ्रम में है, इल्यूजन में है। इल्यूजन क्या है कि रस्सी को सांप समझना, रस्सी है और क्या समझ रहा है सांप, और सांप को क्या समझना, रस्सी समझना। तो वैसी स्थिति हमारी है और हम अपने आप को इतना गर्वित महसूस करते हैं कि मेरे पास ये डिग्री होल्डर हो, इस प्रकार का नॉलेज मेरे पास है, लेकिन पूरे लाइफ टाइम हम बिताएं लेकिन फिर भी इस छोटी सी चीज को हम अनुभव नहीं कर सकते, अंडरस्टैंड नहीं कर सकते कि ये शरीर मेरे सुख देने के लिए नहीं बना है। ये मुझे केवल एक ही चीज प्रदान कर सकता है, केवल दुख। इसलिए कृष्ण गीता में कहते हैं दुखालयम अशाश्वतम, ये शरीर दुखों का आलय है, घर है, और क्या है साथ साथ टेम्पररी है। अभी कोई व्यक्ति सोच रहा होगा कि मैं एंजॉयमेंट करूंगा, भौतिक उपभोग करूंगा, लेकिन कब तक है कि नहीं, कब तक उसकी सीमा है। तो भगवान कहते हैं दुखालयम, ये दुख का आलय है ये शरीर। और शास्त्र और एक शब्द इस शरीर को यूज करते हैं, वो कहते हैं शरीरम व्याधि मंदिरम। क्या है, मेरे पीछे रिपीट कीजिए, शरीरम व्याधि मंदिरम। हाँ, हम मंदिर में जाते हैं तो बहुत सारे विग्रह होते हैं ना, डेटीज होते हैं, अर्चा विग्रह, जैसे यहाँ है गिरिराज है, गोपाल है, राधा माधव है, गौरवताए हैं। तो इस प्रकार से मंदिर में डीटीज है, विग्रह है। तो उसी प्रकार से ये शरीर की भी तुलना एक मंदिर से की गई है, लेकिन इस मंदिर में क्या है, व्याधि का ये मंदिर है, नाना प्रकार की डिजीज। और हम सोच रहे हैं कितना प्रोग्रेस कर, और लोगों को तो अभिमान है कि मैं ऐसे हॉस्पिटल में एडमिट हो रहा हूँ जहाँ एसी रूम है, फर्स्ट क्लास हाई क्लास फैसिलिटीज है। मतलब कितना इल्यूजन है, इतने डिजीज को लेके कस पा रहा है और वो उसको ये गर्व हो रहा है। कुछ लोग तो इतना गर्व से कहते हैं, मैं कई बार मिलता तो कहते हैं हम तो रोज मेडिसिन खाते हैं, बल्कि उसको रोना चाहिए। वो कहते हैं दिखाते ये रहा इतना बड़ा बॉक्स, रोज में मेडिसिन इतनी इतनी खाता हूँ। तो मतलब अंडरस्टैंड करना चाहिए कि वास्तव में मेरा जीवन आनंद की ओर नहीं बढ़ रहा है, दुख की ओर बढ़ रहा है। तो क्यों ये शरीर
प्रभुपाद ने कहा ये बहुत बैड चीज है, मैं भी बहुत खराब है, लेकिन इससे आप एक वंडरफुल चीज प्राप्त कर सकते हो, है ना। क्या है वो वंडरफुल चीज? कृष्ण है। कृष्ण को हमेशा वंडरफुल कहा गया है, कृष्ण का नाम, कृष्ण के गुण, कृष्ण की लीलाएं, कृष्ण का धाम, उनकी जितनी भी एक्टिविटीज है वो वंडरफुल है। हाँ, श्रीमद् भागवतम में एक चैप्टर है कृष्णा बुक में, उसका नाम है वंडरफुल कृष्णा। क्या नाम है? वंडरफुल, अद्भुत कृष्ण है, जिनमें कृष्ण की बहुत सारे उपासनाएं, कृष्ण की बहुत सारे लीलाओं का वर्णन किया है। तो वास्तव में जब हम आनंद की बात करते हैं तो सबसे पहले हमें सोचना चाहिए कि ये आनंद का स्टोर हाउस कौन है, है ना। हम थोड़ा आनंद चाहते क्या लाइफ में? नहीं, हम तो भंडार चाहते लाइफ में। स्टोर हाउस कोई है? आजकल के लोगों के लिए आनंद का स्टोर हाउस मॉल है कि नहीं? वो स्टोर लगता है कि स्टोर हाउस भंडार है, और वहां सारे इंद्रियों के लिए कुछ ना कुछ है, टेस्ट के लिए कुछ है, सूंघने के लिए कुछ है, देखने के लिए कुछ है, टच करने के लिए कुछ है ना, सारी चीजें वहां है। तो हम सोचते हैं कि वहां आनंद है, लेकिन फिर भी व्यक्ति ऐसे चीजों से फिर भी संतुष्ट नहीं है। इसलिए आनंद की जो आनंद घन मूर्ति जिसको कहा गया है वो कृष्ण है। कृष्ण क्या है? पूर्ण रूपेण वो आनंद से बने हुए हैं। हम यदि कहें कि कृष्ण किस चीज से बने हुए हैं? आनंद से। सत चित आनंद। सत मीन्स शाश्वत इटर्नल, चित मीन्स पूर्ण ज्ञानमय, और आनंद मीन्स आनंद, टोटली ब्लिस। तो इस प्रकार से कृष्ण बने हुए हैं, और जो भी व्यक्ति उनके संपर्क में आता है, जो भी उनके टच में रहता है, हाँ, कृष्ण को अपने जीवन में लाता है, निश्चित रूप से वो आनंद का अनुभव कर सकता है। और ऐसा आनंद कि जिसकी तुलना इस भौतिक जगत के आनंद से नहीं की जा सकती। तो कृष्ण इसलिए जब भगवान कृष्ण का प्राकट्य होता है वृंदावन ब्रज भूमि में, तो वहां हम गाते हैं ना, नंद के घर आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। तो नंद के घर में किसने जन्म लिया है? आनंद भयो, आनंद ने जन्म लिया है आनंद महाराज के घर में। तो वास्तव में कृष्ण आनंद के मूर्तिमान स्वरूप है, और हम कृष्ण के प्रति यदि आसक्त हो जाते हैं, कृष्ण को अपने जीवन में एक्सेस करते हैं, कृष्ण से हम प्रीति करते हैं, तो भौतिक रूप से आपके पास कुछ हो या ना हो, लेकिन फिर भी जो आनंद आप अनुभव करोगे उसकी तुलना किसी और धनाढ्य व्यक्ति से नहीं की जा सकती। बाहरी रूप से हमें दिखाई देता है घरों में, लोगों मार्केट्स में, कारों में, कि बड़ी बड़ी कारें हैं, लोग बड़े वंडरफुल हाई क्लास चीजों का इस्तेमाल कर रहे हैं, लेकिन वास्तव में वो सारे ऊपरी पहनावे हैं। उनका हृदय क्या कर रहा है? रो रहा है, क्रंदन कर रहा है, उनका हृदय ढूंढ रहा है, किसी चीज को ढूंढ रहा है, और वास्तव में हम सुख को ढूंढ रहे हैं या आनंद को ढूंढ रहे हैं, इसका मतलब क्या है कि हम वास्तव में कृष्ण को ढूंढ रहे हैं। किसको ढूंढ रहे हैं? कृष्ण को। बचपन से लेकर बुढ़ापे तक हम कृष्ण की खोज में हैं, लेकिन कृष्ण की बजाय वो स्थान किस चीज ने लिया है? किसी व्यक्ति ने ले लिया है, किसी स्थान ने ले लिया है, या किसी वस्तु ने ले लिया है। तो हम किसी न किसी चीज की खोज में हैं जो हमें आनंद है। अल्टीमेटली हम अपने लाइफ में कृष्ण को खोज रहे हैं। तो ऐसे कृष्ण को प्राप्त करना, कृष्ण की कृपा को अनुभव करना, कृष्ण की कृपा को अपने जीवन में लाना बहुत सरल है, लेकिन उसके लिए एक कंडीशन है। क्या है कंडीशन? उसके लिए कंडीशन यही है कि उसके लिए हमें अपने हृदय को सरल बनाना पड़ेगा। क्या करना होगा? सरल। इस जगत में कहाँ है वो सरलता? इस जगत में हर एक व्यक्ति एक दूसरे को एक्सप्लॉइट कर रहा है, रिलेशनशिप में ब्रेक आ रहा है, चाहे माता पिता हो, हाँ, या भाई भाई में हो, पति पत्नी हो, हाँ, बॉस और सर्वेंट हो, सब एक दूसरे को क्या कर रहे हैं? एक्सप्लॉइट कर रहे हैं। और क्योंकि सरलता नहीं है वहां, क्या है? कपटता है। स्वार्थ है, और इसी कारण से व्यक्ति के पास सब कुछ होने के बावजूद भी संतुष्ट नहीं है, सुखी नहीं है, शांति का अनुभव नहीं कर रहा है। तो इसलिए भगवान कृष्ण को जानने के लिए ये एक छोटे से गुण की आवश्यकता है, सिंप्लिसिटी इज द वैष्णविज्म, सरलता। और ये सरलता आ सकती है जब हम मार्गदर्शन प्राप्त करते हैं साधु, गुरु और शास्त्र के द्वारा। इन तीन चीजों के द्वारा हम गाइडेड होने चाहिए सदैव, कोई एक चीज नहीं इनमें से, गुरु, दूसरे है साधु और तीसरा क्या है, स्क्रिप्चर्स, शास्त्र। इन तीनों चीजों को हमें परखना चाहिए, इन तीनों चीजों में घुसना चाहिए, तीनों चीजों से एक्सेस करना चाहिए इंफॉर्मेशन या नॉलेज आदि का। तो इस प्रकार से सरलता, फिर हम उनके आदेशों का पालन करते हैं तो सरलता हमारे हृदय में विकसित हो सकती है, और सरलता के बिना संतुष्टि नहीं है, शांति नहीं है, सुख नहीं है, आनंद नहीं है। इस जगत में तो दिखावे का जगत है, बाहरी रूप से आप जब फ्लाइट में ट्रैवल करते हैं तो एयर होस्टेस कितनी विनम्र होती है, बहुत सरल, वो आपको पूछती है क्या सर्व करो, आपके लिए पानी है, आपके लिए मीठे शब्द है, और हमेशा लंबी स्माइल, उसका मुंह कहाँ तक कान तक जाता है, बिल्कुल हंसती रहती है। हाँ, लेकिन वो क्यों हो रहा है कि उनको उसको पे किया जा रहा है, केवल हंसने के लिए पे किया जा रहा है, स्माइल देने के लिए पे किया जा रहा है, लेकिन वास्तव में हृदय में वो नहीं है। तो ये दिखावा है, ये कपटता है। तो वास्तव में कृष्ण को अनुभव करने के लिए, कृष्ण प्राप्ति के लिए हमारे हृदय को सरल बनाना होगा, और इसलिए मनुष्य जीवन दिया है। शास्त्र कहते हैं कि ये मनुष्य जीवन प्राप्त होने के बाद यदि व्यक्ति अपने हृदय को सरल नहीं करता तो वो व्यक्ति एक पशु से भी घृणित है, कुत्ते बिल्ली से भी उसका जीवन नीच है। ह्यूमन फॉर्म होने के बावजूद भी सिंप्लिसिटी, सरलता नहीं है अपने वाणी में, अपने आचरण में, अपने व्यवहार आदि में। तो इस प्रकार से कृष्ण को हम प्राप्त कर सकते हैं, और ये जो महीना है ये कृष्ण प्राप्ति का क्या है, स्पेशल मंथ है। जैसे अभी दीपावली है तो दिवाली में लोगों को कुछ नजर नहीं आता, वो अंधे हो जाते हैं सब चीजों के लिए, एक ही चीज नजर आती है, क्या है, शॉपिंग शॉपिंग शॉपिंग, और कुछ नजर आता है नहीं, और कुछ टॉक्स होती है क्या, बातें होती है, शॉपिंग के अलावा कुछ नहीं। दिन रात, दिवाली आने से दो महीने पहले ही बात चर्चा शॉपिंग की, दिवाली के दिनों में भी और दिवाली खत्म होने के बाद भी वही चर्चा। तो और इस दिवाली में सारे जो शॉप्स हैं, मॉल्स हैं, हम वहां डिस्काउंट सेल लगा हुआ है, तो हम ढूंढते रहते हैं कहाँ बेस्ट प्राइस मुझे मिलेगा, कहाँ बेस्ट वस्तुएं हैं, डिस्काउंट है, सेल है, जो मुझे बहुत कम दामों में प्राप्त हो सके, अधिक चीजें प्राप्त हो सके। तो वैसे ही जैसे दिवाली में डिस्काउंट है, सेल है, कार्तिक भी क्या है, डिस्काउंट। भगवान बाकी दिनों में आप जो भजन करते हो, भक्ति करते हो, तो कृष्ण को हिलाना बड़ा कठिन है। कृष्ण को अनुभव करना, समझना, उनको प्रसन्न करना, उनके उनका अटेंशन प्राप्त करना, सारी एक्टिविटीज क्या है, कृष्ण का अटेंशन प्राप्त करना। भौतिक जगत में भी हम किसी ना किसी का अपनी ओर अटेंशन चाहते हैं, चाहते कि नहीं, अपने ऑफिस में, अपने घर में, अपने मोहल्ले में, अपने स्कूल में, अपने कॉलेज में, हम इस प्रकार से व्यवहार करते हैं कि किसी का अटेंशन हम चाहते हैं, लेकिन वास्तव में ऐसे अटेंशन का क्या लाभ। वास्तव में हम किसी का अटेंशन, किसी को इंप्रेस करना चाहते हो तो किसको ट्राई करो, कृष्ण को। किसी का अटेंशन चाहते हो तो किसका अटेंशन चाहने का प्रयास करो, कृष्ण का। उसमें सारा अटेंशन भरा हुआ है, सारे जगत का। जैसे चैतन्य महाप्रभु जब दक्षिण भारत की यात्रा में गए, चैतन्य महाप्रभु गोदावरी के किनारे गए, जहाँ राजमुंद्री सिटी है आंध्र प्रदेश में, तो बहुत विशाल उसका वो है, पात्र है। तो वहाँ चैतन्य महाप्रभु को 500 साल पहले मद्रास के गवर्नर रामानंद राय मिले। ये सन्यासी थे और वो एक गवर्नर थे, एक गृहस्थ थे। तो चैतन्य महाप्रभु ने कहा, मैं आपके द्वारा सुनना चाहता हूँ, क्योंकि आप कृष्ण कथा में क्या हो, एक्सपर्ट हो, विशारद हो। तो चैतन्य महाप्रभु ने कहा कि फिर वो बैठे दिन रात कई घंटे वो हिले नहीं, केवल क्वेश्चन किए जा रहे हैं और कृष्ण के बारे में सुना जा रहा है, इतना ग्लोरियस है। तो ऐसे रामानंद राय को चैतन्य महाप्रभु ने पूछा कि इस जगत में सबसे बड़ा फेम, यशवान होना क्या है? यश हम चाहते हैं फेमस होना अपने नॉलेज के द्वारा, अपने ज्ञान ब्यूटी के द्वारा, अपने धन के द्वारा, अपने वैराग्य के द्वारा, इन सब चीजों के द्वारा हम फेमस होना चाहते हैं। तो चैतन्य महाप्रभु ने पूछा कि इस जगत में सर्वोत्कृष्ट फेम या यश क्या है? तो फिर रामानंद राय ने कहा कृष्ण का शुद्ध भक्त बनना। क्या है? कृष्ण का भक्त बनना, इससे बढ़कर फेम नहीं है इस जगत में, इससे बढ़कर डेजिग्नेशन जो हम उपाधि प्राप्त करना चाहते हैं, इससे बढ़कर उपाधि कोई नहीं है। श्रील प्रभुपाद 1977 में जब लंदन गए, उनका आखिरी साल था, आखिरी विजिट था विदेशों का, उसके बाद उन्होंने अपने शरीर को त्यागा वृंदावन में। तो प्रभुपाद उनका स्वास्थ्य बहुत खराब था, तो लंदन गए तो वहाँ बहुत सारे इंडियन स्टूडेंट्स उनको मिलने आए, स्टूडेंट्स और इंडियन जो युवक थे। तो प्रभुपाद ने पूछा, हर युवक को पूछा, आप क्या करते हो, आप क्या करते हो? सबने कहा मैं ये कर रहा हूँ, मैं डॉक्टर हूँ, मैं इंजीनियर हूँ, मैं PhD होल्डर हूँ, इस प्रकार से सब हर कोई बता रहा था मैं कौन हूँ, क्या मेरा डेजिग्नेशन है। प्रभुपाद ने कहा हम इसमें इंटरेस्टेड नहीं है। उन्होंने कहा हम तो एक ही डेजिग्नेशन में इंटरेस्ट रखते, वो क्या है? भक्त, भगवान का भक्त बनना। ये सारी उपाधियाँ हमने अपने पूर्व जीवन में हजारों बार प्राप्त की है, जिसके कारण हम पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम ये संसारे बहु दुस्तारे, बार बार उसी चक्कर में पड़े हैं, उसको हमने प्राप्त किया है। तो प्रभुपाद ने कहा कि वास्तव में लाइफ में कुछ बनना है तो हम क्या करें? भक्त बने, उसमें सारी चीजें इंक्लूड है। अर्जुन बेस्ट योद्धा था, लेकिन उसके ऊपर क्या कवरिंग था? वो बेस्ट कृष्ण का डिवोटी था, उसके अंदर सारी चीजें इंक्लूड है। पूरे वर्ल्ड का राजा था, मोस्ट ब्यूटीफुल पर्सनैलिटी अर्जुन, और एक्सपर्ट था मैनेज करने में हर चीज में, लेकिन बेस्ट क्वालिटी क्या थी? वो कृष्ण के भक्त थे। तो बाकी चीजों में हमें एक्सपर्ट होना कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो प्रॉब्लम तभी है जब हम क्या नहीं है? भगवान के भक्त नहीं है। और वो सारी एक्सपर्टीज हमें दुख दिए बिना, कष्ट दिए बिना रह नहीं सकती। तो इसलिए ये जो कार्तिक है, ये कृष्ण का अटेंशन प्राप्त करने का इजी मंथ है, या कृष्ण को इम्प्रेस करने का ये मंथ है। कृष्ण के लिए आप थोड़ा भी करोगे इस कार्तिक में तो कृष्ण आपके हो जाएंगे। कृष्ण कहते हैं नेहा विक्रमनाशोस्ति प्रत्यवायोन विद्यते स्वल्पमप्यस्य धर्मस्य त्रायते महतो भयात्। भगवान कहते हैं कि कोई व्यक्ति मेरी थोड़ी भी सेवा कर लेता है, सुअल्पमप्यस्य धर्मस्य, थोड़ा भी करता है मेरे लिए, त्रायते महतो भयात्, मैं उस व्यक्ति को उसके महान से महान भय से रक्षा करता हूँ। हमारी कौन रक्षा कर सकता है इस संसार में? जब द्रौपदी का वस्त्र हरण हो रहा था, उसके 5 पति इतने एक्सपर्ट योद्धा थे, फिर भी उसकी रक्षा नहीं कर पा रहे हैं। उस बेचारी द्रौपदी को किसको पुकारना पड़ा? कृष्ण को। हे कृष्ण, हे यादव, हे द्वारकाधीश, हे मथुरा नाथ, आप आइए और मेरी रक्षा कीजिए। कृष्ण आते हैं साड़ी के रूप में आते हैं, है ना, और उसको क्या करते? रक्षा करते। दुशासन उसको नग्न करने में लगा हुआ है, साड़ी छुड़ाने में लगा है, लेकिन कृष्ण जब उनके लाइफ में आए तो बाकी सारी चीजें पराजित हो जाती हैं। तो उसी प्रकार से हमारा प्रयास होना चाहिए अपने लाइफ में, कृष्ण को किस प्रकार से हम लाए। तो ये जो कार्तिक है, कृष्ण को अपने जीवन में लाने के लिए है, कृष्ण को इम्प्रेस करने के लिए है, कृष्ण का अटेंशन प्राप्त करने के लिए है। इसलिए कृष्ण को भक्त वत्सल कहा गया है। कृष्ण के कई गुण हैं, उनमें उत्कृष्ट गुण है कि वो बहुत दयालु हैं, और विशेष रूप से अपने भक्तों के प्रति, इसलिए कृष्ण को भक्त वत्सल कहा गया है। हाँ, जैसे जो गाय है वो बछड़े के प्रति कितनी प्रेम पूर्ण होती है, हाँ, तो वैसे ही भगवान हमारे अंदर चाहे कुछ कमियां क्यों ना हो, लेकिन हमारे अंदर कृष्ण की सेवा करने की सिंसियर डिजायर है, और बाकी चाहे जितनी मर्जी कमियां हो कृष्ण उसको भुला देते हैं, कृष्ण उसको अनदेखा करते हैं और कृष्ण हमें अपने नजदीक स्थान प्रदान करते हैं। ये उनके भक्त वत्सलता है। वत्स का मतलब है बछड़ा, हाँ, गाय का बछड़ा है ना। जैसे मैं अभी 10 दिन पहले पुणे में था, हाँ, कुछ कार्य के लिए, और फिर मैं अपने पेरेंट्स से मिलने के लिए गया था हम विलेज में। तो मदर फादर विलेज में रहते हैं, तो वहाँ उनके पास जब मुझे निकलना था, एक दिन स्टे किया और दूसरे दिन मैं निकल रहा था बैग्स वगैरह लेकर, जैसे घर से बाहर कदम डाला तो उसी क्षण जो उनके गाय थे, पेरेंट्स के पास गाय हैं, तो उनमें से एक गाय ने तुरंत बछड़े को जन्म दिया। मैंने जैसे पाँव बाहर डाला तो बहुत ऑस्पिशियस है, मैंने शास्त्रों में पढ़ा था, तो मैंने कहा नहीं, मैं देखता हूँ उस बछड़े को, देखता हूँ। तो मैं गया, गाय ने जैसे ही जन्म दिया, एक मिनट में मैं वहां पहुंचा, तो गाय, बल्कि वो बछड़े में बहुत सारी गंदगी थी, बहुत सारे लेयर्स थे ना, ब्लड और बहुत सारी चीजें, तो गाय जैसे उस बछड़े को देखा वो इतने उत्साह से, इतने तेजी से उसको चाटने लगी, बहुत फास्ट चाटने लगी, उसके कान, उसका फेस, उनका उसका पूरा बॉडी। और पहले तो बहुत इतना सुंदर नहीं लग रहा था, लेकिन जैसे गाय ने उसको चाट लिया पूरी तरह से, वो बछड़ा बहुत अधिक सुंदर हुआ कुछ ही मिनटों में। तो इसी कारण से कृष्ण को ये जो कार्य है, गाय का बछड़े के प्रति ये जो प्रेम की भावना है, इसी कारण से कृष्ण को ये नाम पड़ा है भक्त वत्सल। क्योंकि जिस प्रकार से गाय ने देखती कि अरे कितनी गंदगी लगी हुई है उस बछड़े के ऊपर, नहीं, वो प्यूरिफाई करती, उसको क्लीन करती है, शुद्ध करती है। तो उसी प्रकार से हमारे पास चाहे जो मर्जी दुर्गुण हो, लेकिन जब हम कृष्ण की सेवा में लग जाते हैं सिंसियर इच्छा के साथ, तो ईमानदारी के साथ, तो कृष्ण क्या करते हैं, हमें बहुत तीव्रता से प्यूरिफाई करते हैं। और हमारे पास जो क्वालिटीज नहीं है, योग्यताएं नहीं है, गुण नहीं है, वो सारे गुण हमें प्रदान करते हैं, और फिर हम वंडरफुली कृष्ण की सेवा कर पाते हैं, कृष्ण का गुणगान कर पाते हैं। इसलिए कृष्ण भक्त वत्सल है। तो ऐसे कृष्ण को प्राप्त करना बहुत टफ है, कठिन है, इसलिए भगवान को कहा गया है असम ऊर्ध्व। असम ऊर्ध्व का मतलब है ना उनके कोई बराबर है, हाँ? तो ऐसे भगवान असम ऊर्ध्व है, उनको प्राप्त करना बड़ा कठिन है, लेकिन वही कृष्ण बहुत सरल हो जाते हैं एक सरल व्यक्ति के लिए, सरल भक्त के लिए। इसलिए शास्त्र कहते हैं सदा मुक्तोपि बद्धोस्मि भक्तेन स्नेह रज्जुभि। हाँ, सदा मुक्तोसि, भगवान सदैव मुक्त है, लेकिन भगवान फिर भी बंध जाते हैं। हाँ, कैसे बनते हैं, भक्तेन स्नेह रज्जुभि, भक्त के स्नेह अफेक्शन जो प्रेम है उसके रस्सी से भगवान बनते हैं। अजितोपि जीतो हम, भगवान का एक नाम अजित है, अजित का मतलब है उनको जीता नहीं जा सकता, लेकिन फिर भी कौन उनको कॉन्कर करता है, कौन जीतता है, डिवोटी, भगवान के जो भक्त है, हाँ, उनको वश में नहीं किया जा सकता, फिर भी भगवान को वश किया करते हैं उनके जो भक्त है। हाँ, इसलिए कृष्ण को भक्त वत्सलता का ये जो गुण है वो उनका प्रदर्शित होता है। तो कार्तिक, ये कार्तिक महीना बहुत पावरफुल है, बहुत इफेक्टिव है, क्योंकि कृष्ण को ये कार्तिक बहुत अधिक प्रिय है। कार्तिक में व्यक्ति कृष्ण की थोड़ी सेवा करता है, कृष्ण उसको एक पहाड़ के समान देखते हैं, अरे इतनी मेरी सेवा की है, एक नाम उच्चारण कर रहे तो कृष्ण देखते इसने करोड़ों नामों का उच्चारण किया है, तब सोचो मालाओं का जप करते हो तो। और कार्तिक में थोड़ी सेवा, थोड़ा नाम, थोड़ा भी आप कृष्ण कथा को सुनते हो अटेंटिवली, कृष्ण देखते अरे मेरे बारे में सुन रहा है। आप इस संसार में भी देखो, कोई व्यक्ति आपके बारे में बात करता है, आपके बारे में बोलता है, आपके बारे में सुनता है तो आपको लगता है ना कि नहीं ये आप कुछ भी करने के लिए तैयार हो, आप उसके फेवरेबल हो जाते हैं, फेवर में कार्य करते हैं। तो वैसे ही कृष्ण है, कृष्ण देखते हैं कि ये जो व्यक्ति ये पर्सन मेरे बारे में सुन रहा है तो कृष्ण बहुत अधिक आनंद अनुभव करते हैं। इसलिए कृष्ण को प्राप्त करना इस कार्तिक में बहुत सरल है। यदि हम क्या करते हैं कार्तिक में इन चीजों को एक्स्ट्रा एंडेवर करते हैं कृष्ण को प्रसन्न करने के लिए, तो हम थोड़ी देर के लिए भगवान की जो विशेष लीला है कार्तिक की, दामोदर लीला, उस पर चर्चा करेंगे। हाँ, तो दामोदर, भगवान को दामोदर कहा जाता है, कृष्ण के अनंत नाम है। कृष्ण के कई सारे नाम हैं, उनमें एक दामोदर है। तो दामोदर का मतलब क्या है? दाम का मतलब रस्सी और उदर का मतलब पेट या कमर, जहां भगवान को माता यशोदा ने बांधा था रस्सी के द्वारा, इसलिए उनको दामोदर कहते हैं। तो परम भगवान कृष्ण ब्रजभूमि वृंदावन में कई प्रकार की लीलाएं करते हैं। आनंद लीलामय विग्रहाय, हेमांग दिव्य छवि सुंदराय, तस्मै महाप्रेम। तो इस प्रकार से कृष्ण आनंद से भरे हैं और बहुत सौंदर्य है, उनमें बहुत सुंदरता है। कृष्ण का नाम कृष्ण है क्योंकि वो क्या है? कर्षति इति कृष्ण, आत्म पर्यंत कर्षति इति कृष्ण, वो सब जीवों को अपनी ओर आकर्षित करने का सामर्थ्य रखते हैं। ऐसे नहीं कि दूसरों को आकर्षित करते हैं, बल्कि शास्त्र कहते हैं कृष्ण अपने आप स्वयं के सुंदरता से आकृष्ट हो जाते हैं, है कि नहीं? कृष्ण स्वयं की सुंदरता से आकृष्ट होते हैं। भगवान जब द्वारका में थे तो द्वारका के एक बाहर निकल रहे थे अपने महल से, रुक्मिणी के महल से, तो वहां एक पिलर था, बड़ा सा पिलर, मरकत मणि आदि से बने हुए पिलर से। हाँ, तो भगवान जैसे निकल रहे थे तो उन्होंने अचानक पिलर की ओर दृष्टि डाली, देखा एक पुरुष है उसमें। कृष्ण के मुंह से शब्द निकले, वहा, वो कहते क्वा चमत्कारिक पुरुषः, ये चमत्कारिक पुरुष कौन है? हाँ, यहाँ जो खड़ा है। फिर बाद में कृष्ण को समझ में आया कौन है, मैं स्वयं। एक बार कृष्ण अपने गोप सखाओं के संग में गोचारण करने के लिए जा रहे थे गोवर्धन की ओर वृंदावन से, तो वहां जब गाय आगे जाती हैं तो गायों का जो खुर के जो चिन्ह है, मार्क है, वो मिट्टी में पड़ते हैं, तो उसमें पानी भरा हुआ था। तो कृष्ण बहुत तेजी से जा रहे थे तो अचानक उन्होंने नीचे देखा तो जो बालक है उन्होंने अपना मुख कमल उनको दिखाई दिया। जैसे उन्होंने देखा फिर वो रुक गए, वो हिल नहीं पा रहे थे, अरे ये कौन है, ब्यूटीफुल बालक है, ये सुंदर बालक कौन है? फिर बाद में उनको पता चला ये कौन है, मैं हूं। तो इस प्रकार से कृष्ण में जो विशेष चार गुण एक्स्ट्रा है उनमें से एक है रूप माधुर्य। भगवान में कृष्ण में रूप माधुर्य बहुत अधिक है, सौंदर्य खान है, सुंदरता से कृष्ण भरे हुए हैं। तो ऐसे कृष्ण जो वृंदावन में कई प्रकार की लीलाएं करते हैं, और कृष्ण का इस जगत में आने का केवल एकमेव कारण है, कई कारण हो सकते हैं लेकिन एकमेव कारण क्या है, केवल 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 अपने भक्तों को आनंद प्रदान करना। और भक्त जैसे कृष्ण का एक न्यू बिजनेस वो है, उसी प्रकार से भक्तों का भी एक न्यू बिजनेस है, क्या? भगवान को आनंद प्रदान करना। ऋषिकेना ऋषिकेश सेवनम भक्ति रुच्यते, भक्ति क्या है? बहुत सरल है, अपनी इंद्रियों के द्वारा कृष्ण को सर्व करो, कान के द्वारा सुनो, आंखों के द्वारा देखो, नाक से तुलसी और पुष्प आदि अर्पित उनका सुगंध लो, वाणी से जीवा से कृष्ण कथा करो, कृष्ण के बारे में बोलो, कृष्ण के नाम का उच्चारण करो, कृष्ण कीर्तन गाओ, और जो शरीर है हाथ पाव पावों से भगवान की परिक्रमा करो, नाचो कूदो, हाथों से सेवाएं करो। तो इस प्रकार से इंद्रियों को कृष्ण की सेवा में एंगेज किया जा सकता है। तो ऐसे भगवान केवल भक्तों को आनंद प्रदान करते हैं, उनका एक बिजनेस है, और विशेष रूप से अपने वृंदावन के जो डिवोटीज हैं। कृष्ण जब वृंदावन में प्रकट हुए हैं तो माता यशोदा और नंद महाराज सर्वाधिक आनंद अनुभव करते हैं, सबसे अधिक आनंद उनको महसूस होता है। तो ऐसे नंद महाराज और यशोदा सदैव कृष्ण के कार्यों में मग्न रहते थे। श्रील प्रभुपाद लॉस एंजलिस में थे तो उन्होंने किसी एक अमेरिकन युवक ने प्रश्न पूछा, स्वामी जी बताओ ये यशोदा ही कृष्ण की माता क्यों है, और कोई स्त्री क्यों नहीं है कृष्ण की माता? प्रभुपाद ने कहा बहुत सरल है, क्योंकि ये जो यशोदा है ये कृष्ण सेवा का सर्वाधिक टेंशन लेती रहती है, सर्वाधिक कृष्ण सेवा का चिंता करती रहती है, यही एक क्वालिफिकेशन है कृष्ण की माँ बनने का, और यही एक क्वालिफिकेशन है कृष्ण का भक्त बनने का। इस जगत में हम कई चीजों का टेंशन ले रहे हैं और वो टेंशन हमें तपाता है, दुख देता है, लेकिन यहाँ भगवान की भक्ति में भगवान की सेवा का आप चिंता लेते हो, टेंशन लेते हो, तो वो क्या है? भक्तिनाथ ठाकुर कहते तुम्हारा सेवा या दुख का है जर सहित परम सुख। हे कृष्ण आपकी सेवा में जो कष्ट है ना, वो कष्ट महसूस नहीं होता, बल्कि वो आनंद की वृद्धि कराता है। तो इस प्रकार से माता यशोदा सदैव 24 आवर्स, और कितने दिन? 360, वहां तो डेज नहीं है, काल नहीं है, टाइम आध्यात्मिक जगत में है ही नहीं। तो माता यशोदा सदैव कृष्ण सेवा के चिंतन में लगी रहती है। हाँ, तो कृष्ण एक दिन, दीपावली का दिन था, सुबह के समय में कृष्ण सो रहे थे और माता यशोदा सदैव कृष्ण के पास सोती है और वो जल्दी नहीं उठती जब तक कृष्ण नहीं उठे हो। तो लेकिन दीपावली के दिन अर्ली मॉर्निंग कृष्ण सो रहे थे, बहुत प्रगाढ़ निद्रा में थे, माता यशोदा उठी, ब्रह्म मुहूर्त में उठी, सुबह बहुत जल्दी उठी। क्यों उठी? क्योंकि माता यशोदा को कृष्ण के लिए कई सारे व्यंजन बनाने थे, कृष्ण के लिए मक्खन तैयार करना था, दही और कई सारे पदार्थ बनाने थे, इसलिए माता यशोदा उठी और दौड़कर भागे दूसरे स्थान में, जहां उन्होंने अपने कपड़ों को टाइट किया और एक मटका लिया और मंथन करने लगी, दधि मंथन करने लगी। अभी माता यशोदा दूसरे रूम में है, कृष्ण एक रूम में सो रहे हैं, तो माता यशोदा को फिर भी बहुत दुख हो रहा है कि मेरा ये जो बालक है कृष्ण है, उनको मैं देख नहीं पा रही हूँ, उनके मुख कमल मुझसे दूर हैं। तो माता यशोदा चिंतन कर रही थी, दुखी थी, एक प्रकार से वेदना महसूस कर रही थी, लेकिन उसी क्षण माता यशोदा तीन प्रकार से अपने आप को कृष्ण में उन्होंने एंगेज रखा था। एक तो अपने शरीर से कृष्ण के लिए लेबर कर रहे थे, है ना, कार्य कर रहे थे, मंथन करना, दही मंथन करना कितना इजी है? नहीं, आजकल तो मिक्सर आ गए, मिक्सी और कई सारे मशीन आ गए, हमें बटन दबाओ सब कुछ रेडी है ना। लेकिन वहां कृष्ण की सेवा के लिए वो आलसी नहीं थी माता यशोदा, वो कहे कि लाइट नहीं है अभी नहीं बना सकते, हम मिक्सी खराब हो गया, नहीं, वहां वो सब चाहिए चलेगा, कृष्ण की सेवा के लिए अपने आप को डालो, कृष्ण यही देखते हैं कितनी स्ट्रॉन्ग डिजायर है। तो माता यशोदा दधि मंथन करने लगी, अपने शरीर से पसीना निकल रहा है, और लेकिन साथ साथ अपनी वाणी से क्या कर रही थी, कृष्ण ने जो लीलाएं कार्य किए थे उनके संबंधित गीतों को गाते जा रही थी, और मन में सोच रही थी कि जो ये मक्खन निकलेगा वो मैं कृष्ण को खिलाऊंगी। इस प्रकार से उनका मन, उनकी वाणी, उनका शरीर 100% कृष्ण की सेवा में था। ये परम भक्त का लक्षण है, सदैव उसका मन, उसका शरीर, उसका वाणी कृष्ण की सेवा में नियुक्त रहता है। जब ये हो रहा था, कृष्ण का वर्णन करते जा रहे थे, अकेले थे, तो उस समय कृष्ण सो रहे थे, जैसे नारद मुनि को किसी ने पूछा भगवान कहाँ रहते हैं, तो भगवान ने उनको बोला था कि यत्र गायन्ति मन भक्ता तत्र तिष्ठामि नारद। हे नारद, जहां मेरा भक्त मेरे गुणों को गाता रहता है, बोलता रहता है, वहां मैं निवास करता हूँ, मुझे किसी और जगह ढूंढने का प्रयास मत करो, मैं तो जहां तहां मंदिर आदि छोड़कर वहां भागता हूँ जहां मेरे बारे में चर्चा हो रही है, मेरा कीर्तन आदि हो रहा है, मेरे गुणों का गान हो रहा है। तो ऐसे माता यशोदा कृष्ण का गुणगान कर रहे थे तो कृष्ण अपने नींद भी छोड़कर कहा क्या करते भागते, अरे मदर यशोदा इतना स्वीटली मेरे बारे में बोल रही है गा रही है, तो उठते तो पहले देखते कि माता यशोदा नहीं है, तो उनको लगा कि क्या हो गया आज माता को कहाँ चली गई, तो कृष्ण उस स्थान से चलते में जाते तो सामने देखते हैं माता यशोदा दही का मंथन कर रही है, और कृष्ण जाते हैं और सीधा जो मथनी है मंथन करने वाला जो इंस्ट्रूमेंट है उसको पकड़ते हैं, पकड़कर रोक देते हैं, माता यशोदा समझ गए, और कृष्ण को बहुत भूख लगी थी सुबह सुबह, तो कृष्ण कोई भूखे कुछ भौतिक चीज के लिए नहीं है, भगवान तो आत्माराम है आप्त काम है, उनको आनंद प्राप्ति करने के लिए ये भूख प्यास सर्दी गर्मी ये सब हमारे लिए है, ये जड़ देह के लिए है, भगवान के लिए सब चीजें नहीं है, भगवान तो संतुष्ट है, भगवान को तो मदर माता यशोदा के प्रेम की भूख थी, वो गए और उस मथनी को पकड़ा, माता यशोदा ने समझ गई कि कृष्ण क्या चाहते हैं, अपने गोद में लेना चाहते, कृष्ण चाहते कि मैं उनको अपने गोद में ले लूं, तो माता यशोदा की जो गोद है वो कृष्ण की प्रॉपर्टी है, कृष्ण का पूरा अधिकार है, किसकी गोद में जाके बैठना, यशोदा माता के, तो कृष्ण को गोद में उठाया और कृष्ण को देखा, हाँ कृष्ण के सौंदर्य को देखती जा रही और स्तनपान करा रही थी, दूध पिला रही थी, दूध पिलाते पिलाते माता यशोदा के आंखों से आंसू निकल रहे थे कृष्ण के सौंदर्य को देखकर, कृष्ण के बारे में सोच सोच कर, ये बहुत उन्नत प्रेम का धरातल है भगवान के प्रति, भगवान का जो भक्त है वो सदैव अपना मन अपना हृदय कृष्ण के विचारों में निमग्न करता है, और सागर की भांति उसके हृदय से कृष्ण के गुणों की महिमा निकल पड़ती है, तो ऐसे यशोदा माता जब सोच रही थी रो रही थी साथ साथ, उसी क्षण यशोदा माता ने देखा सामने जो स्टोव है या चूल्हा है उसके ऊपर दूध उबल के गिर रहा था, गिरने ही वाला था, यशोदा माता ने सोचा अरे वो दूध वहां से गिर रहा है, तो उन्होंने सोचा नहीं और कुछ, अभी कृष्ण को घमंड हो गया था, जब दूध पीते पीते कृष्ण सोच रहे थे देखो मैं कितना होशियार हूं कितना बुद्धिमान हूं, माता यशोदा अपना मंथन कर रही थी उसको मैंने रोक दिया और वो बेचारी सब काम बंद करके मुझे लेके बैठे, मैं कितना एक्सपर्ट हूँ, हाँ तो ये उनको घमंड हो रहा था गर्व हो रहा था, लेकिन उसी क्षण यशोदा माता ने उनका घमंड चूर चूर कर दिया, जैसे भगवान बहुत एक्सपर्ट है किसी के घमंड को चकना चूर करने के लिए, हाँ वैसे ही भगवान के भक्त भी भगवान के घमंड को सहन नहीं करते, माता यशोदा ने उठाया और रख दिया अभी बैठ जाओ नीचे, और वो दौड़ पड़ी वहां दूध को बचाने के लिए, तो एक प्रकार से कोई सोचेगा ये क्या प्रेम है रामा यशोदा का, वो कृष्ण को वो छोड़ रही है और अपने दूध के लिए बचा रही, दूध कृष्ण से ज्यादा महत्वपूर्ण है क्या, नहीं तो, लेकिन वो दूध बचाने गए थे क्योंकि वो विशेष दूध कृष्ण के लिए उन्होंने रखा था, दोनों चीजें कृष्ण के लिए, कृष्ण को छोड़ा भी कृष्ण के लिए, किसके लिए हम नकल नहीं कर सकते, ये भक्तिमय सेवा का उन्नत अंडरस्टैंडिंग है, तो जब माँ यशोदा जाती हैं दूध को बचाने के लिए, क्योंकि यशोदा माता स्वयं दही मंथन करने में लगे थे, तो क्यों यशोदा माता दही मंथन कर रही थी, क्योंकि वो सोचते थे कि ये मेरा पुत्र है, यशोदा का प्रेम इतना अधिक था कृष्ण के प्रति, उनको ये विचार सहन नहीं हो रहे थे कि कृष्ण के लिए मैं किसी नौकर को लगाओ कि दही मंथन करो या नौकरानी को लगाओ कि दही मंथन करो अर्थात कृष्ण खाएंगे, ये विचार यशोदा माता को सहन नहीं हो रहे थे, इतना प्रेम वो स्वयं लग पड़े, और दूसरा क्या था कि माता यशोदा सोचते थे हाँ कि सदैव ये गोपिकाएं सदैव कंप्लेन करती रहती हैं कि मेरा बालक हमेशा दूसरों के घरों में जाके मक्खन आदि की चोरी करता है, और क्या मेरे घर में वो क्वालिटी ब्रांड नहीं है, हम सोचते ना डिफरेंट ट्रेडमार्क ब्रांड्स है, तो क्वालिटी मक्खन में नहीं दे पा रही हूँ, दही नहीं दे पा रही हूँ, मिल्क नहीं दे पा रही हूँ, माता यशोदा क्या किया उस समय, यशोदा माता ने उनके गायों में कुछ ऐसी गायें थी जो कलरफुल और सुगंधित दूध देती थी, कैसा दूध था कलरफुल और सुगंधित, और उनको कलरफुल घास दिए जाते थे, यशोदा स्वयं उन गायों की सेवा करती थी, और उसका दूध स्पेशली कृष्ण के लिए वो कई प्रकार के व्यंजन बना देती। इतना केयर। माता सोचती थी कि अभी किसी का कंप्लेंट नहीं आना चाहिए, ये यदि कृष्ण ग्रहण करेंगे तो कोई भागेंगे नहीं वो दूसरों के घरों में। लेकिन कृष्ण वास्तव में ऐसा नहीं कि उनको यहाँ मिल नहीं रहा था इसलिए भाग रहे थे, बल्कि कृष्ण भाग रहे थे वृंदावन की जो ब्रज गोपिकाएं हैं वो इतना प्रकार की दही के या मक्खन आदि बनाती थी, और वो सारी गोपियां बनाते बनाते सोचती थी कि कृष्ण को आना चाहिए और इसको चुरा के खा लेना चाहिए, और फिर वो कंप्लेंट भी करते थे। डिजायर क्या थे? हाँ, ये इच्छा। मतलब हम जब भोग लगाते भगवान को घंटी बजाते रहते, भगवान आए कि नहीं आए, खा के चले कि नहीं गए, ये हमें पता नहीं रहता। लेकिन वहां वो जो गोपिकाएं हैं वो इतने अफेक्शन, इतने प्रेम की भावना से दही दूध आदि का मंथन करती हैं कि कृष्ण जहां मर्जी हो ब्रज में वहां से भाग के उनके घरों में जाएंगे, चाहे अंधेरे रूम में वो दूध दही मक्खन रखा हो उसको ग्रहण करेंगे, क्योंकि उसमें क्या भरा हुआ है? प्रेम। भाव ग्राही जनार्दना, भगवान इसे सार को ग्रहण करते हैं। उनका जो प्रेम, जो सिंसियर डिजायर है कृष्ण को अर्पित करने की, तो भगवान कृष्ण को एक बार एक गोपी ने पकड़ा, जिनका नाम प्रभावती था। क्या नाम था? प्रभावती। तो प्रभावती ने उनको रेड हैंड पकड़ा। कैसे पकड़ा? व्हाइट हैंड या रेड हैंड? कैसे? अभी दही में, दूध में हाथ या मक्खन में हाथ डालेंगे तो हाथ कैसे होगा? और फिर कैसे कहेंगे आप रेड हैंड? नहीं, व्हाइट हैंड पकड़ा कृष्ण को। जैसे पकड़ा वो प्रभावती ने कहा अभी ले चलती हूँ यशोदा के पास। तो प्रभावती ने हाथ पकड़ा कृष्ण का, ले चली उनको पकड़ते, और उसने अपना पल्लू डाला था पीछे, कृष्ण का हाथ पकड़ के जा रहे, आगे देखते हुए जा रहे, पीछे देखने ही नहीं है किसको पकड़ा है, कृष्ण ही थे। तो फिर गए, कहा हे यशोदा, हे यशोदा। तो यशोदा माता अपने महल से बाहर आई, हे प्रभावती क्या हुआ? तो प्रभावती ने कहा देखो मैं हर बार शिकायत करते थे और आप कभी भी विश्वास नहीं कर रहे थे, तो ये जो ये रहा तुम्हारा बालक जिसको मैंने अभी रेड हैंड पकड़ के लाई हूं। तो यशोदा माता ने उस बालक को देखा तो वो बालक कृष्ण नहीं थे, वो कौन थे? वो प्रभावती के अपने पुत्र थे। यशोदा ने कहा तुम पागल तो नहीं हुई, अपने बेटे को पकड़कर मेरे पास लाई हो? तो ये प्रभावती लज्जित हो जाती है, फिर उस अपने पुत्र को कंधे में उठाती हैं और वापस जाने के लिए निकलती हैं। तो जैसे वापस जा रही थी तो वो बालक उनका पुत्र नहीं था, वो कौन था कंधे में? कृष्ण थे। वो उन्होंने कहे प्रभावती देखो तुम ऐसा करोगी इस बार तो मैं तुम्हारा पुत्र बना हूं, अगली बार मुझे पकड़ के ले जाओगे तुम्हारा पति बन के तुम्हारे साथ चला जाऊंगा। तो प्रभावती डर गई। तो इस प्रकार से कृष्ण सदैव आनंद प्रदान करते हैं। एक बार एक गोपिका ने कृष्ण को पकड़ा तो अभी कृष्ण तो डरे हुए थे, और उसने भी रस्सी ले ली और रस्सी लेकर कृष्ण को बांधने के लिए तत्पर हो गई। जब वो ट्राई कर रही थी बांधने का तो उस समय वो बंधे नहीं जा रहे थे कृष्ण, अभी पसीने छूट रहे थे उस गोपी के। उन्होंने कृष्ण को कहा कृष्ण तुम ही तो बताओ कैसे तुम्हें बांधा जा सकता है ना? तो वो फॉर्मूला भगवान ने भगवद गीता में बोला है। तो फिर कृष्ण कहते मैं ना तुम्हें सिखाता हूं कैसे मुझे बांधा जाता है। कृष्ण को जिस खंभे से खड़ा करके वो बांधने वाले थे, कृष्ण ने कहा आप खड़ी हो जाओ। उस गोपी को खड़ा किया और कृष्ण बांधने लगे बांधकर पूरा बांध दिया। बहुत स्ट्रांग जो गांठ है वो मारी, 2-3 गांठ मारी ताकि छूटे ना। और उन्होंने कहा इस प्रकार से बांधा जाता है और मैं अभी जा रहा हूं। कृष्ण वहां से निकल पड़े। इस प्रकार से ब्रज भूमि ये आनंद का सरोवर है। सो घोषम निमज्जन्तम आख्यापयन्तम, जो हम दामोदर अष्टकम गाते हैं उसमें सो घोष में ब्रज के डिवोटीज, उनको कृष्ण आनंद के सरोवर में डुबो देते हैं। एक बार माता यशोदा ने कृष्ण को कहा देखो अभी गो पूजा का समय हो रहा है, किसी बछड़े या गाय को पकड़ के ले आओ बेटा, कृष्ण प्लीज लाओ किसी को पकड़ के लाओ। तो कृष्ण आए, एक छोटे से बछड़े को पकड़ के लाए जो उनके कंट्रोल में हो सकता है, अभी छोटे से बालक है। और जब घर के अंदर घुस रहे थे तो उनको दही मक्खन आदि टंगा हुआ नजर आया। वो बैल के ऊपर, वो जो बछड़ा था उसके ऊपर बैठ गए तो जो टंगा हुआ था उसको उन्होंने पकड़ा, कुछ निकालने वाले थे तो बछड़ा वहां से चला गया। बछड़ा निकल जाता है और कृष्ण लटक के रहकर माता अंदर से चिल्लाती है, कृष्णा हाँ कहाँ है, अभी गो पूजा होने का समय आया है, कहाँ है तुम्हारा बछड़ा, कहाँ है तुम्हारे गाय आदि। तो इस प्रकार से कृष्णा सदैव एक ही चेतना में रहते हैं, कैसे मैं अपने भक्तों को आनंद के सागर में डुबाऊं, हाँ उनको आनंद प्रदान करो। तो ऐसे हाँ जो कृष्ण है सदैव मग्न रहते थे और माता यशोदा इसी कारण से कि कोई शिकायत नहीं आनी चाहिए इसलिए वो मक्खन आदि बना रहे थे। लेकिन यहाँ जो माता यशोदा दूध को बचाने के लिए गई, बल्कि वो शास्त्र कहते हैं कि दूध क्यों वहां से गिर रहा था, क्योंकि आध्यात्मिक जगत में सारी चीजें चेतन है, लाइफ है सब में, वहां पे हर वस्तु बोल सकती है, चल सकती है, सब कुछ कर सकती है। तो वो दूध सोच रहा था, जब माता यशोदा दूध पिला रही थी तो वो दूध वहां से सोच रहा था, अरे कृष्ण वो सारा दूध माता ही पियेंगे तो मेरा क्या लाभ, मैं अपने मेरे जीवन का क्या लाभ यदि मैं कृष्ण की सेवा नहीं कर पाया। तो वो दूध जिस बर्तन में था वो दूध सोचता था कि अच्छा है कि मैं अभी आत्महत्या कर लेता हूँ, आग में कूद जाता हूँ, क्योंकि मैं किसकी सेवा नहीं कर पाऊंगा, कृष्ण की, क्योंकि वो माँ का ही दूध पी रहे हैं, फिर मुझे पियेंगे नहीं तो क्या लाभ मेरे जीवन का। दूध कहता है कि मेरा जीवन यदि कृष्ण की सेवा में नहीं है तो क्या लाभ। इस प्रकार से माता यशोदा वहां जो आध्यात्मिक जगत की जो चीजें वो चेतन है। शास्त्र कहते हैं कि वृंदावन में माता यशोदा जब राइस कुक करती हैं तो उनको, जैसे अभी आपके घरों में अभी तो प्रेशर कुकर आ गए, पहले राइस बनाना हो तो आप रखो बर्तन में, उसको ढक्कन डालो, 10 बार जाते पक गया कि नहीं देखते हैं ना। तो लेकिन माता यशोदा राइस स्टोव के ऊपर या चूल्हे के ऊपर ढक के बाहर जाते थे और बाहर जाकर गोपिकाओं के संग में कृष्ण कथा करती रहती थी, चर्चा करते थे। और जब उनको वहां से वो पुकारती थी, हे रहे राइस तुम कुक हो गए कि नहीं हुए हैं, तो वहां से जो चावल है वो कहता था अभी मैं पक गया हूँ, अभी मुझे निकाला जा सकता है। इस प्रकार से आध्यात्मिक जगत की सारी चीजें चेतन है, शास्त्र कहते हैं। तो कृष्णा ने देखा कि माता यशोदा मुझे छोड़ के गई है, तो उन्होंने एक कंकड़ या पत्थर लिया, उस मटके को तोड़ा जिसको माता यशोदा उनके लिए मंथन कर रही है। फिर वो वहां से भागते हैं, भागकर जाते हैं दूसरे रूम में जहाँ दही और मक्खन आदि टंगा हुआ था, एक उखल लेते हैं, उसको उल्टा करके उसके ऊपर खड़े होकर वो निकालते हैं, खुद खाते हैं, बंदरों को बांटते हैं। जब यशोदा माता आकर देखती कि क्या हुआ, देखती कि ये तोड़ा है, तो वो सोचती है ये किसका काम होगा, किसका, कृष्ण का। तो माता यशोदा अभी बहुत गुस्सा हो जाती है। उनका एक मिशन है यशोदा माता का, क्या मिशन है, माता यशोदा अपने हाथ में छड़ी लेती है और वो सोचती है कि ये जो बालक है ये पुरुषोत्तम है, मतलब सब में क्या है, उत्तम है, और इसको ट्रेनिंग की आवश्यकता है, ये बहुत शरारतें करता है, और इसको ट्रेनिंग मतलब ट्रेनिंग एंड एजुकेशन दो चीजें चाहिए कैरेक्टर के लिए। तो उसी प्रकार से माता ने कहा अभी तो इसको दंडित करूंगी ताकि ठीक हो जाएगा, नहीं तो ये पुरुष अधम हो सकता है। तो फिर यशोदा माता ने छड़ी हाथ में ली और वो गई, और कृष्ण जिस पर खड़े थे, हाँ जैसे चोर होता है उसकी दो आंखें नहीं होती, चोर के पास बहुत आंखें होती है, इधर उधर देखते रहते हैं, हजारों दिशाओं में देखता है, हाँ घर का व्यक्ति जिसके घर में चोरी हो रही है उसको ज्यादा कुछ चीजें नहीं दिखाई देती। तो माता यशोदा गए तो कृष्ण अपनी कई बार इधर उधर देख रहे थे, कोई मुझे देख तो नहीं रहा है, माता यशोदा आ तो नहीं रही है। तो फिर कृष्ण देखते कि माता यशोदा आ रही है और वो खाली हाथ नहीं आ रही है, उसका हाथ भरा हुआ है, किससे भरा हुआ है, छड़ी से। अब देखो जैसे शास्त्र कहते हैं कि मंदिर में आप जाते हो या गुरु या साधु को मिलने जाते हो तो खाली हाथ नहीं जाना चाहिए, टेम्पल में जाते हो तो कुछ ना कुछ लेके जाओ भगवान के लिए, पत्रम पुष्पम फलम तोयम। तो तो यहां माता यशोदा कुछ नहीं ले जा रही है, हाथ में क्या ले जा रही है, छड़ी, और बाद में क्या लेती है, रस्सी। प्रभुपाद एक लेक्चर में कहते कोई ऐसा व्यक्ति है जो मंदिर में छड़ी लेके जा रहा है भगवान को, हाँ दिखा दो आपको अभी, क्या रस्सी लेके जा रहा है आपको बांधता हूं। ये अधिकार किसको है, केवल यशोदा माता को। तो यशोदा माता छड़ी लेकर आए तो कृष्ण डर गए, कांपने लगे, बल्कि कृष्ण के नाम से पाप कांपते हैं, कृष्ण का नाम लेने मात्र से हजारों हजारों पाप राशि खत्म हो जाती है, पाप के जो माउंटेन से वो टूट पड़ते हैं। जो ये सूर्य है कृष्ण के भय से रोज उदित होता है, रोज अस्त होता है, सारे देवता ब्रह्मा विष्णु दुर्गा गणेश वरुण इंद्र चंद्र ये सब क्या है, कृष्ण के भय से सेवा में लगे हुए हैं, कार्यरत है। तो वैसे ही लेकिन वही कृष्ण जिनसे सारा जगत भयभीत है, वही कृष्ण किन से भयभीत है, यशोदा माता से। और फिर यशोदा माता और कृष्ण ने आज तक लगभग कृष्ण 3 साल था, ये लीला महावन में हुई थी गोकुल में, कृष्ण 3 साल 4 महीने के लिए महावन में थे, उसके बाद छठी कर आए, फिर डेग काम्यवान, फिर नंदगांव जाके रहे। तो ऐसे कृष्ण वहां बहुत छोटी आयु में ये लीला हुई थी। तो पहली बार कृष्ण ने माता यशोदा के हाथ छड़ी देखी थी, कभी छड़ी नहीं ली थी, पहली बार उन्होंने ली थी। फिर कृष्ण भागने लगे, भागेंगे कहां, उन्होंने सोचा ऐसी जगह भागता हूं जहां मेरी पिटाई से बच जाऊंगा। जैसे कोई बच्चा शरारत करता है वो कहां भागता है, माँ 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 पीछे लगी तो पिता के पास जाएगा, जहां पिताजी है बहन है भाई सब लोग बैठे उधर जाएगा ताकि पिटाई से बचेगा। तो भगवान ने भी ऐसे योजना बनाई, वो भागे मेन गेट से बाहर जहां बहुत सारी गोपिकाएं हैं उनके मित्र वगैरह हैं। जैसे बाहर भागे तो उनको लगा मैं बच गया, दोनों हाथ ऊपर किए उन्होंने, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 राम। उन्होंने कहा मैं बच गया, लेकिन आज मैं यशोदा माता के हाथ से बच नहीं सकती, कोई नहीं बचाने वाला। हाँ हाँ, जैसे कहते ना राखे कृष्ण मारे के, मारे कृष्ण राखे के, जिसको कृष्ण मारना चाहे इस संसार में कोई उनको बचा नहीं सकता। जयद्रथ को मारना चाहते थे कृष्ण, कोई और बचा पाया उनको नहीं, और कृष्ण जिनकी रक्षा करना चाहते हैं कोई उनको मार नहीं सकता, अर्जुन की कैसे रक्षा की भगवान ने। तो वैसे ही आज यशोदा माता यदि मारना चाहे तो कृष्ण भी अपनी रक्षा नहीं कर सकते, कोई और उनको बचा नहीं सकता। तो फिर माता यशोदा ने छड़ी उठाई और मारने वाले को देखा, बहुत डरा हुआ है, भयभीत हो गया है, कांप रहा है, आंखों से आंसुओं की धारा बह रही है, और आपने आंखों आंसू पोंछ रहे हैं। जनरली क्या होता था, कृष्ण जब भी रोते थे तो सदैव माता यशोदा उनके आंसू पोंछते थे। कृष्णा सोचने लगे एक हाथ तो मेरा पकड़ा ही माने और दूसरे हाथ में छड़ी, ये क्यों नहीं मेरे आंसुओं को क्यों नहीं पहुंच रही है, आज इसे क्या हो गया है। तो कृष्ण बहुत सोच रहे थे, विचार कर रहे थे, डरे हुए थे। फिर कृष्ण स्वयं ही अपने आंसू पोंछने लगे, जो कजल हम काजल लगाया हुआ था उससे पूरा काला हो जाता है। और इस दिन वहां कुंती देवी भी गई थी, वहां कौन गई थी, गोकुल में कुंती ने यह सब दृश्य देखा था। तो वहां जब कृष्ण को ये सब हो रहा था तो कृष्ण चिल्ला रहे थे, हे बलराम मुझे बचाओ, हे रोहिणी माता मुझे बचाओ। और वहां ना रोहिणी माता थे उस दिन, ना बलराम थे, नंद महाराज के जो भाई है उपानंद, उनके घर में विशेष प्रोग्राम था, जैसे आनंद उत्सव है वैसे भी वहां भी कोई उत्सव होगा, तो वहां स्पेशल इन्विटेशन था, उसमें ये बलराम भी गए थे और माता रोहिणी भी गई थी। तो अभी कृष्ण को बचाने वाला कोई नहीं, नंद महाराज तो वैसे ही कुछ अपने कार्य से बाहर थे, तो फिर कृष्ण ने देखा कोई बचाने वाला नहीं है। तो फिर माता यशोदा उनको कहती है, आज मैं तुम्हें ना बहुत दंडित करूंगी, तो उनको बांधने का विचार करती है। तो जिस मथनी से मंथन कर रही थी उसकी जो रस्सी है वो माता यशोदा ने छोड़ी और लाकर कृष्ण को बांधने लगी, बांध रही थी तो वो रस्सी छोटी पड़ रही है। फिर कृष्ण ने माता यशोदा ने और रस्सी लाई, फिर भी छोटी है। यशोदा माता ने देखा, दो आश्चर्य, क्या दो आश्चर्य, अरे मैं जब भी इस बालक को बांध रही हूं हमेशा ये जो रस्सी है दो ही उंगलियां कम पड़ती हैं, जितनी मर्जी रस्सियां मैं जोड़ू और दूसरा क्या, इस बालक की जो कमर है, उदर है, वो उतना ही है। ऐसे नहीं कि कृष्ण बिल्कुल फुटबॉल की तरह बड़े होते जा रहे हैं कमर, नहीं, साइज वैसा ही है उनकी कमर का, पेट का। माता यशोदा कहती, मैं इसको रोज कपड़े पहनाती हूँ, सुलाती हूँ, नहलाती हूँ, तो इसकी कमर तो मेरे हाथ में आती है, छोटे बच्चे के आते नहीं, माँ एक हाथ से कमर पकड़ती और मारती है, स्नान कराती है, कपड़े पहनाती है। कहती रोज में ये सब करती हूँ, कमर इनके हाथ में आने वाले, और आज क्या हो रहा है कि इस कमर में कई किलोमीटर की रस्सियां बांध रही हो फिर भी वो पूर्ति नहीं हो रही है। तो यशोदा माता ये सोच रही थी, तो भगवान की जो शक्तियां हैं, पराश शक्ति विविधैव श्रूयते, भगवान की अनंत शक्तियां हैं। तो कृष्ण के साथ ये जब हो रहा था तब सब लोग देख रहे थे, सारी गोपिकाएं दूर से देख रहे थे, तो मजा कहते और रस्सियां लाती हूँ, दूसरी गोपियां कहते यशोदा को रस्सियां ले लो, तो और रस्सियां देती हैं। तो उस समय कृष्ण सुबह के समय में जब माता यशोदा ये सब कर रहे थे, तो कृष्ण के हृदय में एक इच्छा का उदय हुआ था। क्या इच्छा थी? कृष्ण ने देखा कि बाकी सारे उनके छोटे छोटे मित्रगण है वो खिड़की से देख रहे ये सब चीजें, और वो कह रहे चलो खेलने के लिए चलते हैं। कृष्ण की डिजायर थी बाहर जाने के लिए, लेकिन अब ये माता यशोदा तो सारे दरवाजे बंद करने वाले हैं, रस्सी से बांध दिया, कभी कहाँ जा सकते, दरवाजा खुला हो तो भी नहीं जा सकते। तो कृष्ण की इच्छा थी बाहर जाने की, इसलिए भगवान की एक शक्ति विभू शक्ति वो आकर उनकी कमर में निवास करती है उधर, और जिससे विभू शक्ति उसका नाम है। विभू का मतलब बड़ा विशाल और अनु का मतलब छोटा। तो इसी कारण से कृष्ण को बांध नहीं पाई, रस्सियां बहुत लग रही थी। फिर फाइनली कृष्ण ने देखा कि माता यशोदा इतना प्रयास कर रही है। हाँ, एक उंगली क्या है? प्रयास, और दूसरा क्या है? भगवान की कृपा। तो कोई भक्त भगवत सेवा के लिए, भगवत प्राप्ति के लिए एंडेवर करता है, सिंसियरली प्रयास करता रहता है अपने जीवन में, तो कृष्ण का हृदय पिघलने लगता है। अरे कितना ही प्रयास कर रहा है मेरी सेवा के लिए, मेरे प्रचार के लिए, मेरे नामों का उच्चारण करने के लिए, हाँ मेरी महिमा का गान करने के लिए। तो कृष्ण द्रवित हो जाते हैं और फिर अपनी कृपा उस व्यक्ति पर प्रदान करने लगते हैं, और जिसके द्वारा कृष्ण उस व्यक्ति के बंधन में आ जाते हैं। तो माता यशोदा के बंधन में आए कृष्ण, क्यों? क्योंकि उन्होंने प्रयास किया कृष्ण को बांधने का। उसी प्रकार से हमें भी अपने जीवन में सदैव प्रयास करना चाहिए। कोई भक्ति में क्या है? उत्साह, निश्चया, धैर्य, सबसे पहले तो हमेशा उत्साही होना चाहिए कृष्ण भक्ति करने के लिए। लाइफ अलग अलग फेज से गुजरेगा तो भी हमें थोड़ा भी अपना उत्साह कम नहीं करना चाहिए। मैं भी शारीरिक कष्ट है, मैनेज फैमिली ट्रबल्स है, सोशल ट्रबल्स है, हर ट्रबल्स आएंगे। हम कांटों के स्थान में निवास कर रहे हैं, जहां जहां कदम डालो वहां कांटे चुभेंगे ही चुभेंगे, है कि नहीं? तो लेकिन कृष्ण देखते कि इतना सब होने के बावजूद भी मेरी सेवा को छोड़ नहीं रहा है। जैसे हरिदास ठाकुर थे, हरिदास ठाकुर को 22 बाजारों में मारा जा रहा था चाबुक से पूरे दिन, लेकिन और क्यों मारा जा रहा था 500 साल पहले? कि तुम्हें हरे कृष्ण महामंत्र का जप छोड़ो। वो एक मुस्लिम थे, लेकिन उन्होंने कहा, हाँ, वो कहते हैं कि मेरा प्राण भी चले जाए तब उतना अभी बदले छाड़े हरिनाम, हाँ खंड खंड है यदि जाओ मोर प्राण, मेरे शरीर के टुकड़े टुकड़े हो जाए, मेरे शरीर से प्राण निकल जाए, लेकिन फिर भी ये जो कृष्ण नाम है, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे, इसको मैं छोड़ूंगा नहीं। तो ये है एंडेवर, ये है निश्चय, और उसके साथ धैर्य की आवश्यकता है। धैर्य का मतलब जैसे जैसे मिलिट्री में वो लगाते हैं नोटिस बोर्ड में, भर्ती, मतलब आज भर्ती, भर्ती मीन्स आपको वो लेते हैं सेवा में, और ये नहीं कि आज आप मिलिट्री में अपने पहुंच गए और दूसरे दिन आप बहुत बड़े योद्धा हो गए, ऐसे नहीं। तो हम भक्ति में भी वही है कि हम क्या हैं, हमें धैर्य होना चाहिए, धैर्य, धीरज जिसे कहते हैं। तो माता यशोदा बांधती हैं और फिर वो चली जाती हैं। तो फिर अभी थोड़ा समय गुजरा था, दोपहर के बाद बलराम आते हैं, और बलराम आते हैं, कहाँ आते हैं? कृष्ण को देखने के लिए। कहाँ है कृष्ण, कहाँ है कृष्ण? तो देखा तो कृष्ण को तो ऐसे बंधा हुआ है, जैसे बंधा हुआ देखा अपने छोटे भ्राता को, तो बलराम आग बबूला हो गए, उछलाने लगे, कौन है वो जिसने मेरे भाई कृष्ण को बांधा है, वो नहीं जानता कि मैं कौन हूं, मैं वही हूं लक्ष्मण। हाँ, इस प्रकार से बोलने लगे, मैं वही अनंत शेष हूं, सहस्र मुखों वाला, और मैं क्या करूंगा, इस ब्रज को पूरा जला डालूंगा, जिसने बांधा है उसको मार डालूंगा। ऐसे बोलते जा रहे थे, बोलते जा रहे थे बहुत गुस्से से। तो उस समय एक छोटा सा बालक आता है, कहता है बलराम इसको ना माता यशोदा ने बांधा है। वो चुप हो गए, बलराम क्या हो गए, चुप, बिल्कुल शांत। अभी वो समझ गए मेरी पहुंच माता यशोदा तक नहीं है। फिर वो कृष्ण के पास जाते हैं, कृष्ण मैं तुम्हें हमेशा बताता हूँ, ये इस प्रकार की हरकतें मत किया करो, शरारतें मत किया करो। अभी वो व्रत दधी मंथन कर रहे थे यशोदा, वो तोड़ा ठीक है, लेकिन उसके पास जाकर भी और कुछ करने लगे, और सब बंदरों को खिला रहे हो, तोड़ रहे हो, फोड़ रहे हो, ये सब करने को किसने कहा था। तो अभी कृष्ण सोचे, तो कृष्ण और जोर से रोने लगे, इतना जोर से रोने लगे तो बलराम का फिर से हृदय पिघल गया। जैसे बच्चा जोर जोर से रोता है, माता पिता के अंदर क्रोध वो भी तो भी पिघल जाते हैं। फिर बलराम को कहा, नहीं हमें इसको बचाना होगा, इसको छोड़ना होगा। तो बलराम पूरा अपना सीना चौड़ा करके, पूरा अपना शक्ति, बलराम सारा बल के स्रोत है, हाँ सारे जगत उनसे बल प्राप्त करता है, भक्ति के लिए बल की आवश्यकता है। ऐसे बलराम से भी अधिक बल किसके पास था, यशोदा माता के पास। वो गए अपने सारे बलशाली, बलराम चले गए और यशोदा माता के पास डांटने लगे, तुम्हें पता नहीं है कि मैं कौन हूं, फिर से मैं लक्ष्मण हूं, मैं अनंत शेष हूं, मैं ये हूं, मैं वो हूं। हाँ, तो उन्होंने कहा और कौन हो तुम, और बताओ। तो फिर तुम्हें इतना भी पता नहीं है कि जिसने तुम्हें बांधा है वो कृष्ण परम भगवान है, वही है जिन्होंने हिरण्यकश्यपु का वध किया था, वही है जिन्होंने हिरण्यक्ष का वध किया था, वही है जिन्होंने रावण को मारा था। इस प्रकार से जितना कथाएं है सारी बोलने लगे, ये किया था, वो किया था। माता यशोदा ऐसी देखने लगी बलराम की ओर, कहने लगी, माता यशोदा ने कहा कि ये जो सारे भगवान के नाम तुमने लिए हैं, इतना सारा लंबा लिस्ट, कि यही है जिससे वो सासुर को मारा, वो सासुर को मारा, आप ये सब भगवान को कोई और घर नहीं मिला था, मेरे घर में सब भगवान कैसे अवतरित हो गए हैं, भागो यहां से, नहीं तो तुम्हें भी बांध डालूंगी उसके साथ। तो बलराम चुप होकर गए कृष्ण के पास, फिर दोनों रोने लगते हैं। बलराम कहते हैं, अभी मुझ में सामर्थ्य नहीं है आपको बांधा है, और ऐसे वैसे रस्सी से नहीं बांधा, आपको बांधा है प्रेम की जो रस्सी है, हाँ भक्तेना स्नेह रज्जुभिः, स्नेह अफेक्शन प्रेम, उसकी रस्सी से कृष्ण को बांधना था, जिसके कारण इवन बलराम भी नहीं छोड़ पाए, तो और कौन हिम्मत कर सकता है। कृष्ण के जो सबसे पहले विस्तार है, कृष्ण के सबसे करीब है। हाँ, तो इस प्रकार से माता यशोदा कृष्ण को अपने प्रेम पाश में बांधती है और कृष्ण बन जाते हैं। तो ये कार्तिक एक्सप्रेस जा रही है गोलोक वृंदावन, ये कार्तिक एक्सप्रेस कहाँ जा रही है, जैसे आजकल आपको तेजी से पहुंचना है तो दुरंतो है, नॉन स्टॉप, तो वैसे ये कार्तिक एक्सप्रेस 30 दिन में पहुंचती है। वैसे भगवान के धाम जाने के लिए आपको लाखों जन्म लगेंगे, कितने दिन लगेंगे, लेकिन कृष्ण हमें स्पेशल डेज देते हैं, कार्तिक के दिन, जिसमें हम कृष्ण को सरलता से प्राप्त कर सकते हैं। तो आप सब इसमें बैठ जाओ, सीट अवेलेबल है, अनलिमिटेड लोग इस एक्सप्रेस में बैठ सकते हैं, कोई रिजर्वेशन करने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन एक चीजें करनी होगी आपको। हाँ, इस एक्सप्रेस में बैठना है तो शास्त्र कहते कि कुछ चीजों को आपको करना पड़ेगा। क्या है वो चीजें, जैसे हम कुछ देने की बात आती है तो वो भाषा हमें समझ में नहीं आती, लेने की भाषा समझ में आती है, नहीं बचपन से वही तो सिखाते हैं माता पिता बच्चों को, देना नहीं सिखाते, बेटा लेते रहो, स्कूल में जाओगे तो ज्ञान लेते रहो गुरु जी से, कोई गेस्ट आते तो उनसे कुछ मिठाइयां लेते रहो, सब लेते रहो, देने की भाषा नहीं। तो यहाँ हमें कुछ देना होगा। क्या देना होगा? तो शास्त्र कहते हैं कि कार्तिक में हमें पांच चीजें करनी चाहिए। वो पांच चीजें क्या है? स्नानम जागरणम दीपम तुलसी वल पालनम कार्तिकेय प्रकुर्वन्ती तेरा विश्व मूर्तयः। कार्तिक में पांच चीजों को करना चाहिए। स्नानम जागरणम दीपम, सबसे पहले क्या करना चाहिए कार्तिक में? रोज ब्रह्म मुहूर्त में उठना चाहिए। ब्रह्म मुहूर्त कितने बजे होता है? 8 बजे। या जब जब मेरा मन करे तब ब्रह्म मुहूर्त है, नहीं? हमारी तो ये अंडरस्टैंडिंग है। ब्रह्म मुहूर्त 4 बजे के आसपास। जैसे प्रभुपाद को किसी ने पूछा, ब्रह्म मुहूर्त मीन्स सूर्योदय से 1.5 घंटा पहले, सूर्य उदित होने से। तो प्रभुपाद को किसी व्यक्ति ने पूछा कि प्रभुपाद आप ये बताओ कि कोई व्यक्ति आध्यात्मिक जीवन में सीरियस है या दृढ़ है, वो कैसे पता चले? प्रभुपाद ने कहा 4 से पहले उठता है ना वो, अभी कितना कठिन है। तो कार्तिक में मैं भी बाकी दिनों में हम बहुत कार्य में बिजी हैं, लेकिन कार्तिक में हमें ब्रह्म मुहूर्त जल्दी उठने का प्रयास करना चाहिए, स्नान करना चाहिए और भगवान के नामों का जप करना चाहिए कार्तिक में। और दूसरी चीज क्या है? स्नान, फिर है जागरणम। जागरणम का मतलब है ऐसे कि पूरी रात जागते रहो 30 दिन। तो कोई कहेगा अरे तो बड़ा सरल था, लेकिन आगे तो कठिन कठिन चीजें बता रहे हो। जागरणम का मतलब है कि इन दिनों में अपना जो समय है वो फालतू के कार्यों में मत गवाओ। जब भी आपके पास समय होता है उसका इस्तेमाल करो कृष्ण के बारे में कार्य करने में, कार्य करने के लिए। सुनो, जप करो, शास्त्र पढ़ो, टेम्पल विजिट करो, धाम विजिट करो, ये सब चीजें करो। मतलब अपने समय का सदुपयोग करो कृष्ण से संबंधित कार्यों में, यह है जागरण। और तीसरी चीज है दीपम, दीप भगवान को अर्पित करना। दीप भगवान को आप गिफ्ट कर, कृष्ण सोचते हैं मुझे दीप अर्पित किया है कृष्ण, तो वो वंडरफुल गिफ्ट है। कार्तिक में दीप से बढ़कर कोई भेंट कृष्ण को नहीं है, कृष्ण उसको स्वीकारते हैं बहुत आतुरता के साथ। वो दीप रोज हमें अर्पित करना चाहिए, चाहे हम जहां मर्जी हो। और इस दीप के साथ क्या होना चाहिए? दामोदर अष्टकम, जो विशेष प्रार्थना है उसका उच्चारण करना चाहिए। शास्त्र कहते हैं दामोदरम अष्टकम नामम श्रोत्रम दामोदर अर्चनम नित्यम दामोदर आकर्षित पठे सत्यव्रतम मुने। कि कोई व्यक्ति नित्य हमें दामोदर अष्टकम का उच्चारण करता है कार्तिक में, तो दामोदर आकर्षी, कृष्ण दामोदर को अपनी ओर आकर्षित करता है। हाँ, तो ये चीज करनी चाहिए। और आगे है तुलसी, तुलसी की सेवा करो, अधिक से अधिक तुलसी की सेवा करो, उनकी केयर करो, उनको जल अर्पण करो, उनको ड्रेस पहनाओ, उनकी मंजरियों को तोड़ो, इस प्रकार से तुलसी की सेवा करो, तुलसी के नए पौधे लगाओ और तुलसी दूसरों को दान करो। कार्तिक में बेस्ट है, बहुत लाभदायक है तुलसी वन पालन। और एक तुलसी से संबंधित है कि तुलसी का जो गार्डन है उसकी देखभाल आगे करो। इस प्रकार से कार्तिक में और श्रीमद् भागवतम या भगवत गीता या कृष्ण लीला को पढ़ो, भागवतम में कृष्ण पुस्तक, तो वो सारे पुराण पढ़ने का लाभ है। तो कार्तिक में ऐसे कई चीजों को हमें करना चाहिए। और प्रयास करो कि कभी टेंपल में जाओ, मंगल आरती, अभी जो 37 में जो मंदिर है वहां लगभग 80-90 लोग आते हैं, भक्त आते हैं सुबह 4 बजे की मंगल आरती में, 4:30 बजे मंगल आरती होती है। आपके यहाँ से भी आते हैं सेक्टर 9, कहाँ से आते हैं डिवोटी सुबह कार्तिक स्पेशल स्पेशल आप एंडेवर देखोगे, दिखाओगे कृष्ण के लिए, तो कृष्ण के ही कृपा के हम पात्र बनेंगे। तो इस प्रकार से इस कार्तिक को गंभीरता से लीजिए और इस कार्तिक एक्सप्रेस में बैठिए। 30 दिन की जर्नी है, कितने दिन बचे हैं अभी? कुछ दिन बचे हैं, फिर भी सीट अवेलेबल है। आप बैठो और गंभीरता से ले लो कार्तिक को और आध्यात्मिक कार्यकलाप।
तो आप भगवान दामोदर को अपनी ओर आकर्षित कर सकते हैं। श्री श्री यशोद दामोदर के कार्तिक मास की श्री प्रभुपाद।